हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 13 एंड 14। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् शब्दों का अर्थ, सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा अच्छा मन से संन्यस्य त्याग कर आस्ते रहता है सुखम अर्थात सुख में वशी संयमी नव द्वारे नौ द्वारों वाले पूरे नगर में देही देहवान आत्मा नैव नहीं एव निश्चय ही कुर्वन करता है न नहीं कारयन कराता हुआ। अनुवाद, जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देहधारी जीव आत्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मरण करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करता है और इस देह बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः जीव ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक वास करता है। ये नवद्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे पुरी देहि हंसो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों की नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ, ये इनसे युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताक्षर उपनिषद 3.18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। श्लोक नंबर 14 कृपया मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शब्दों का अर्थ, न अर्थात नहीं, कर्तृत्वं कर्तापन या स्वामित्व को, न तो कर्माणि कर्मों को, लोकस्य लोगों के, सृजति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी, न तो कर्मफल कर्मों के फल से संयोगम संबंध हो, स्वभाव प्रकृति के गुण तू, लेकिन प्रवर्तते कार्य करते हैं। अनुवाद, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से अपरा प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे भद्र वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्मफलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जीव जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता रहता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसमें इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस अत्यंत ही रहस्यमय गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरण्डस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं पीतं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिकाकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत गीता मात की जय हो। अत्यंत ही सुंदर टॉपिक भगवान श्री कृष्ण कर्मों के विषय में, ये कर्मयोग हम पढ़ रहे हैं जिसमें कृष्ण भावना भावित कार्य के विषय में बताया जाएगा। भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से कर्मों के विषय में बता रहे हैं। भगवान ने श्लोक नंबर 7 में कहा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते। वो कार्य तो करता है, कुर्वन अपि न लिप्यते। कौन? योग युक्तो, जो भगवान के साथ अपना योग को जान लेता है, वो अपने योग को निर्माण करता है, योग से युक्त होकर जो वो कार्य करता है, क्योंकि वो विशुद्ध आत्मा होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है, मन भी शुद्ध होता है, जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि इंद्रियां तो संयम है, जितेंद्रिय होता है, उसका मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं, क्योंकि विजित आत्मा होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है। फिर सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सब जितने भी प्राणी होते हैं वो उनके प्रिय होते हैं, यानी कि वो सबको एक ही स्तर पर समझता है, और कार्य करते हुए भी कुर्वन अपि न लिप्यते। फिर भगवान ने 8 और 9 में अलग अलग कार्यों के विषय में बताया, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शं जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपञ्चचन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियां इंद्रियातेषु वर्तन्त इति धार। कि वो कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे वो सुन रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सो रहा है, अपने अंतर में सदैव समझ रहा है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए वो सदैव क्या सोच रहा है, इंद्रियां इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार, कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है, क्योंकि इंद्रियां वो तो इंद्रियां नहीं है ना, वो तो वास्तव में उसको अपनी आध्यात्मिक चेतना पता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर वो इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रियां इंद्रियों के कार्य कर रही हैं, इंद्रियां अपने विषयों में जारी हैं, पर मैं तो उनसे पृथक हूँ। उसके बाद भगवान ने बताया, ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, लेकिन उसके फल में कोई भी आसक्ति न रखो। संगम त्यक्त्वा करोति, अगर ऐसा करोगे लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विवाम भसी, अगर ऐसे कार्य करोगे तो कभी भी कर्मों के अपराध के फलों में, पापों के फलों में नहीं, तुमको भुगतना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार पद्म पत्र यानी जो लोटस फ्लावर होता है वो कभी भी पानी से गीला नहीं होता, उसी तरह यदि तुम भगवान कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करोगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे, तो कार्य करते हुए कभी लिप्त नहीं होगे। तो फिर ऐसा सोचा कि फिर कार्य क्यों करूं, अगर उसका कर्म का फल ही नहीं चाहिए तो क्यों करूं। तो भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध। आत्मशुद्धि के लिए कार्य करना पड़ेगा, इसलिए मन से बुद्धि से भले अगर खाली इंद्रियों से भी आप अपने आप को कार्य में लगाए रखो, क्योंकि इस तरह से कार्य करोगे तो कर्म योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध। वो कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रखते योगी, लेकिन वो सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा, श्लोक नंबर 12 में बहुत ही सुंदर बताया कि यदि युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, यदि आप योग से युक्त होकर कार्य करोगे, कर्म योग करोगे, तो क्या होगा, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। अगर कर्म का फल को भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया तो समझो आपको नैष्ठिकी शांति प्राप्त होगी, लेकिन यदि अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निम, अगर आप अयुक्त हो, योग में युक्त होकर कार्य नहीं कर रहे हो, कर्म कांड के लिए कार्य कर रहे हो और कार्य के फलों में आसक्त हो, निबध्यते, तो आपको बंधन में बंधना पड़ेगा। तो यहाँ पर अर्जुन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये आप क्या बता रहे हो। अर्जुन बोले, भगवान कैसे बता रहे हो, कभी बोलते हो तुम कार्य कर रहे हो फिर भी समझो कि कार्य नहीं कर रहे हो, तीर चला रहे हो फिर भी सोचो कि तुम तीर नहीं चला रहे हो, कार्यों के फलों को त्याग दो, तुम कार्य करने वाले हो ही नहीं, बल्कि क्या कर रहा है, प्रकृति कार्य कर रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में कार्य कर कौन रहा है, वास्तव में कर्ता कौन है। तो आज से भगवान ने एक बहुत ही सुंदर, जैसे हम सब की अक्सर बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा होती है, ऐसी सोच होती है कि शास्त्र कहता है कि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है हर कार्य की जिम्मेदारी भगवान की है, चाहे वो पवित्र कार्य है अथवा कोई अपराध है। तो भगवान क्योंकि कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर मैं कैसे मान लूं कि मैं गुनाहगार हूँ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान ही करता है तो फिर भुगतना हमें क्यों पड़ता है। इस सवाल को भगवान बहुत ही डिटेल से क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से भगवान बता रहे हैं हु इज द डूअर, कि कर्ता कौन है, उसके विषय में आज से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। देखते हैं हम क्या समझ में आता है। गुरु और गौरंगा से प्रार्थना है कि इसको अच्छे तरीके से समझें। भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा, सर्व कर्माणि यानी सारे कार्य जो है मनसा संन्यस्यते, वो कार्य सारे करेगा लेकिन मनसा अर्थात मन से संन्यस्य, मन से वो बिल्कुल संन्यास में होगा, यानी मन कभी भी कार्य में नहीं लगाएगा। मतलब अगर कोई देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर देता है मन से, है ना, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य यानी कि जो उसकी नेचर है उसको वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, देह से त्याग नहीं करता बल्कि मन से त्याग कर लेता है। मन किसी भी कर्म के अंदर अथवा कर्मों के फलों के अंदर नहीं लगाता है। तो भगवान कहते हैं सुखम वशी, है ना, ये आस्ते सुखम वशी, उसे वास्तविक सुख प्राप्त होगा। वास्तव में भक्तों इस संसार में हर कोई जीव, चाहे वो आध्यात्मिक हो, उसकी प्रकृति आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, वो आध्यात्मिक तरीके से रह रहा है या भौतिक तरीके से रह रहा है, सुख चाहता है, है ना। क्यों चाहता है? बिकॉज द नेचर ऑफ सोल इज प्लेजर सीकिंग। वो जो आत्मा है वो सच्चित आनंद भगवान का अंश है और वो सदैव आनंद की खोज कर रही है। Nobody plans to pain, ये ना कि मुझे तकलीफ मिले, मुझे दुख मिले, मुझे किस तरह से मैं अपने आप को ना तकलीफ, कोई ऐसे सोचेगा कि मैं किस तरह से बीमार हो जाऊं, कोई ऐसा तरीका हो कि मैं ना दुखी हो जाऊं, या ऐसा कोई तरीका हो कि मैं फेल हो जाऊं, नहीं। हर कोई क्या सोचेगा कि किसी तरह से मैं आनंद प्राप्त करूं। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आप आनंद की खोज कर करके इन शरीर, इस शरीर के माध्यम से यदि आप आनंद की खोज करना चाह रहे हो, आप अभी तक अपने मन से कर्मों को त्यागा नहीं है, कर्मों के फलों में आसक्ति को खत्म नहीं किया है, तब तक आपको आनंद कभी भी प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि जैसे जब तक हम अपने इस इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेडिकल टेक्स्ट बुक में एक नाम आता है डॉक्टर फ्रॉड का, उनको कहा जाता है फादर ऑफ द साइकोलॉजी। उसने एक न्यू फिलॉसफी बनाई और उसके द्वारा उसने कहा कि क्योंकि स्त्री का नेचुरली आकर्षण होता है पुरुष की ओर और पुरुष का नेचुरली आकर्षण होता है स्त्री की ओर, और अगर इन आकर्षण के बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो इसके कारण जीव का जो मानसिक संतुलन है ना वो बिगड़ जाता है, यानी वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो इस जो रिस्ट्रिक्शंस है ना उसको खत्म कर देना चाहिए। He actually propagate the philosophy of free sex, है ना, कि कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह की वो फिलॉसफी बता रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि भौतिक डिस्टर्बेंस का कारण ही यही है कि जीव को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, इसके कारण वो दुखी है या डिस्टर्ब, ये जो फ्रस्ट्रेट है जन जीव, उसके यही कारण है। लेकिन कुछ समय पहले तो उन्होंने यही अनर फिलॉसफी झाड़ी, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि वो इसी पर काम कर रहे थे, इसी के विषय में सोच रहे थे, तो डेफिनेटली वो भी इलिसिट सेक्स से है ना ग्रस्त हो गए। और फिर कुछ समय के बाद उसने दूसरी शास्त्र, दूसरा किताब निकाला और कहा कि नहीं, ये भौतिक इंद्र तृप्ति से जीव का मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीव, वास्तविकता तो ये है कि मन अगर भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहेगा तो वो मन कभी भी अपने वास्तविक लक्ष्य के विषय में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके उसको खाली क्या याद रहेगा कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा, अभी आनंद नहीं है और आनंद प्राप्त करने और करना और करना, तो ये हवस जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। वास्तव में जो अपने कर्मों के फलों का मोह त्याग देता है, जो मन से किसी भी इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं करता है, उसी को सुख प्राप्त होता है। परंतु जीव अज्ञानता के कारण अपने आप को ये शरीर समझ बैठता है और सोचता है कि मैं इस शरीर को प्रसन्न करके ही आनंदित हो सकता हूँ। जैसे वास्तव, जैसे हमारे इस संस्थापक आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, उनको हृदय के अंदर कोई भी इच्छा नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे इतना ना अच्छा हाई फाई स्टैंडर्ड होना चाहिए मेरे रहने का। एक बारी मायापुर में जब है ना मंदिर को है ना बना रहे थे, तो श्री प्रभुपाद जी के लिए एक छोटा सा हट बनाया था शुरू शुरू में, और श्री प्रभुपाद जी के लिए बना दिया, तो श्री प्रभुपाद जी उसी में रह रहे थे। तो कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि ये बहुत छोटा सा कमरा है और इसमें ना हमें श्री प्रभुपाद जी के लिए और भी बड़ा बनाना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक है ना रूम बनाने के लिए तैयारी की, और श्री प्रभुपाद जी को बताया कि हम चाहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रूम बनाना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें भी रह लूंगा, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो खाली बैठ के आना भक्ति करनी है और प्रचार करना है। तो लेकिन अगर आप सबको प्रॉब्लम है कि उस रूम में आप सब मतलब पूरे नहीं आ सकते हो, छोटा है और है ना सब लोग मैं सही तरह से प्रचार नहीं करूँ, तो भली बनाओ, लेकिन मेरे लिए ये सोच कर कि शीला प्रभुपाद जी के लिए तो मेरे लिए ये करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए वो भी पर्याप्त है। तो इसी तरह से शीला प्रभुपाद जी के लिए अक्सर ट्रैवलिंग के भी बनाते थे कि भाई यहाँ ऐसे अगर यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो श्री प्रभुपाद जी के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि उनकी आयु भी बड़ी थी। तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आई एम लाइक अ काउ, आप मुझे जिधर भी लेकर जाओगे, मुझे तो मिल्क देना है, मैं तो वहां पर दूध दे दूंगा। मेरे लिए ये मत सोचा करो कि मैं ट्रॉलेंट करूंगा या नहीं करूंगा, मैं जब तक हूँ मुझे केवल केवल अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो एक वास्तविक जो शुद्ध आत्मा होता है वो इसीलिए कार्य करता है कि मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई हूँ, यानी कि वो अपने जो भी सिचुएशन होती है उसमें सेटिस्फाई होता है। जैसे इस संसार में आनंद नहीं है, और फिर उसको आनंद कहाँ से मिल रहा है जब इस संसार में सुख है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, फिर भी यहाँ पर कहा संन्यासस्ते सुखम वशी, है ना, कि उसे सुख प्राप्त होगा। जब सुख रखा नहीं है तो फिर सुख आएगा कहां से, तो यहाँ पर लिखा है वशी। वशी का मतलब होता है संयमी। जैसे अगर आपको कहीं जाना होता है, समझो जंगल से आप गुजर रहे हो, तो जंगल में क्या होगा, हर जगह पर कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, कहीं धूप होगी, कहीं है ना कीड़े होंगे, तो आप जंगल में क्या होगा, जिधर भी पांव रखोगे तो क्या होगा, आपके पांव को कष्ट पहुंचेगा, है ना। तो आप जंगल को कवर नहीं कर सकते कि पूरे जंगल में आप ऐसा करोगे, पूरे जंगल में कारपेट बिछा दोगे कि भाई मैं जहां पांव रखूं वहां पर मेरे पांव को कष्ट ना हो, ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, अपने पैर में शूज पहनोगे, है ना, ऐसे शूज पहनोगे कि वो कंकर पत्थर या ये जो भी जीव जंतु है वो आपके पैरों को कष्ट ना दे सके। उसी प्रकार इस संसार में दुख ही दुख है। संसार में जो जीव आएगा उसे आनंद प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि कोई अपने मन को सेटिस्फेक्शन का शूज पहना देता है तो वो किसी भी स्थिति में सुखी हो जाता है। इसे भगवान ने कहा, संन्यास्यास्ते सुखम वशी, जो अपने मन को संयमित कर देता है, मन से संतुष्ट है कि जो कुछ भी दिया कृष्ण वो मेरी औकात से ज्यादा है, बल्कि इसमें सुखी रहता है और सदैव यह सोचता है कि कृष्ण मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ये फैसिलिटीज मुझे दी हैं वो उन फैसिलिटीज से बहुत ज्यादा है जितना कि मैं डिजर्व करता हूँ। तो उसको वो जब इतना संतुष्ट हो जाता है तो उसको कभी भी भौतिक दुख नहीं लगते हैं। फिर क्या भगवान कहते हैं, नवद्वारे पुरे देही, पुरे कहते हैं सिटी, नगर, शहर, वो ये नवद्वारे पुरे देही, वास्तव में भगवान ने इस शरीर को सिटी कहा है, एक शहर, एक नगर जिसके अंदर देही अर्थात आत्मा रह रहा है। नवद्वारे के विषय में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जैसे शरीर के अंदर 9 होल्स होते हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, लिंग तथा गुदा, इनके द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर में ये 9 दरवाजे हैं जिनमें से किसी भी एक से ये आत्मा निकल कर चली जाती है, लेकिन जब तक ये रह रही है इसमें, यहाँ पे भगवान ने कहा नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन न कारयन, क्योंकि उस आत्मा को ये पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि इस शरीर में क्या हूँ, रह रहा हूँ। नवद्वार ये तो एक घर है जिसके अंदर मुझे रहने के लिए स्थान दिया गया है, ताकि ये जो शरीर है वो ये वो है ना, मेरे पास वो वस्तु है जिसके द्वारा मैं अपने रियल गोल तक पहुंच सकता हूँ। फिर नैव कुर्वन न कारयन, वो बिना कुछ किए, यानी कि वो कुछ भी नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों कि उसने सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, यानी कि अपने मन से समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है। वास्तव में जब जीव कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को जान जाता है। क्यों, वो क्या स्थिति है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और इस आत्मा में जो आत्मा है वो शरीर के अंदर रह रही है, मैं तो भगवान का दास हूँ, मुझे केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना होता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करके वो तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलक हो जाता है, नैव कुर्वन न कारयन, कि वो ना कार्य करता है और ना ही कुछ कराता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब जो कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर यह अभी भी प्रश्न रहता है कि फिर कार्य कौन कर रहा है, क्योंकि शरीर तो एक घर है, वो तो जड़ है, वो कैसे कोई कार्य कर सकता है, और क्या फिर आत्मा कार्य कर रही है? अगर शरीर कार्य नहीं कर रहा है तो क्या आत्मा कार्य कर रही है? तो भगवान बताते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगात स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब इसमें भगवान ने 3 बार न शब्द इस्तेमाल किया है। न कर्तृत्वम, कर्तृत्वम का मतलब होता है कर्तापन या स्वामित्व को, यानी कि वो कर्ता नहीं है, वो कुछ भी, जो कौन है, देहधारी जो आत्मा है, ये जो प्रभु लिखा हुआ है ना, सृजति प्रभु, यानी जो इस शरीर का, देहधारी शरीर का जो स्वामी है, वो ना कर्तृत्वम, ना वो कार्य कर रहा है, न कर्माणि, कर्माणि का मतलब होता है कर्म को लोकस्य सृजति, लोकस्य सृजति का क्या मतलब है कि वो खुद भी कार्य नहीं कर रहा है और ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कभी तो क्या होता है, हम खुद कार्य करते हैं, या फिर कभी कभी जैसे एजेंट बन के दूसरों से कार्य करवाते हैं, क्योंकि क्या मैं नहीं कर रहा हूँ
मैं मतलब कर नहीं रहा हूँ, दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ यहाँ से लेकर ये काम करो ये काम करो, लेकिन आत्मा के लिए तो ये भी बता दिया कि ना कर्तृत्व वो कार्य भी नहीं कर रहा है, ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना ही लोगों को, दूसरे जो लोक हैं उन जितने भी लोग हैं उनको कार्य के लिए प्रेरित करता है, ना कर्म फल संयोगात। कर्म फल संयोगात का मतलब होता है उसको कर्म के फलों से भी कोई मतलब उसका कोई अधिकार नहीं है ना। अब देखो आप जो कार्य करोगे तो उसके ही कार्य का फल आप उसके अधिकारी बनोगे ना। अगर आप कार्य नहीं कर रहे हो, कार्य करवा भी नहीं रहे हो, तो उस कार्य के फल का अधिकारी कैसे हो सकते हो। कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं न कर्तृत्व, ना तो कार्य करता है, ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, और ना ही लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, न कर्म फल संयोगात। फिर तो जाहिर सी बात है उसको कर्म के फल का कोई अधिकार भी नहीं होता है, तो फिर कार्य कौन कर रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं स्वभावस्थि प्रवर्तते। स्वभावस्तु का मतलब होता है प्रकृति के गुण, यानी जो भौतिक प्रकृति है, लेकिन वही भौतिक प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। यानी यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शरीर रूपी नगर का जो स्वामी है, प्रभु जो है, देहधारी जीव आत्मा जो है, वो ना तो कर्म सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फलों की रचना करता है। यह सब तो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा को प्रसन्न करना ही आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है। परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त आत्मा का और कोई कारण नहीं है। लेकिन जब आत्मा इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहती, वो क्या सोचती है कि मैं खुद से एंजॉय करूं, भगवान की सेवा नहीं करूं, अपने आप को एंजॉय करना चाहती, तो उसको भौतिक इस संसार में भेज दिया जाता है। फिर भौतिक संसार में क्या है, तीन गुण है। अब तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वास्तव में आत्मा में शुद्ध है, लेकिन जब इस संसार में आती है तो तीन गुणों के द्वारा कवर्ड हो जाती है। अब कवर्ड हो जाती है तो क्या होता है कि वो अपने आप को यह शरीर मानने लगती है। वास्तव में चार टाइप की कॉन्शियसनेस होती है। नंबर एक जागृति, नंबर दो स्वप्न, नंबर तीन सुषुप्त और नंबर चार समाधि। जागृत अवस्था क्या है कि आपको पता हो कि मैं कौन हूँ, है ना, आपको पता है कि मैं कौन हूँ, आप ये शरीर हो या आत्मा हो आपको पता हो। स्वप्न का मतलब होता है जैसे सपना, जैसे सपने में हम देख रहे होते हैं जो हो रहा होता है वो नहीं होता है, और सुषुप्त यानी इतनी गहरी नींद कि उसमें सपना भी ना आए, बिल्कुल ड्रीमलेस जो नींद होती है ना उस वैसी। और नंबर चार है समाधि। समाधि का मतलब होता है प्योर कॉन्शियसनेस जिसके अंदर आपको ये पता हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। अब जागृति का क्या मतलब है कि वो जाग रहा है मगर उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना, सो नहीं रहा है, जाग रहा है लेकिन फिर भी अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, आत्मा के विषय में नहीं जानता। या तो जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि एक बादशाह था, वो सपने में क्या देख रहा है, उसने सपने में देखा बटरफ्लाई को, है ना, कि एक तितली है मेरे सपने में, तो वो सोच रहा था कि मैं बादशाह हूँ, मैं सपने में बटरफ्लाई को देख रहा हूँ, या मैं बटरफ्लाई हूँ, मैं सपने में बादशाह को देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही निद्रा टूटी और अपने गुरु से पूछा कि वास्तव में मैं कौन हूँ, बादशाह हूँ, मैंने सपने में देखा बटरफ्लाई को, तो बोला नहीं, एक पहला सपना ये है कि तुम ये बादशाह हो, हाँ पहला सपना तो ये है कि तुम बादशाह हो, और सपने के अंदर दूसरा सपना ये है कि तुमने बटरफ्लाई को देखा। मतलब कि ये अपने आप को जब हम जीव ये सोचता है ना कि मैं बादशाह हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये सब ये एक स्वप्न अवस्था है। इससे जाकर हम जब जाते हैं आगे, उसके अंदर हम लोग सपने देखते हैं कि भाई ये जो संसार में रहकर हम लोग कोई सपना देखते हैं तो वो स्वप्न अवस्था होती है, और आगे जाके हमें ये भी याद नहीं रहता है कि हम सपना देख रहे हैं या सत्य है या कुछ भी, जैसे बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है, एथिक्स होते हैं, कुछ खबर ही नहीं होती है कि वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। लेकिन समाधि क्या होती है? प्योर कॉन्शियसनेस। जब आपको वास्तविकता पता चल जाए, यानी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और यदि मुझे खुद को प्रसन्न करना है तो उसका एक ही तरीका है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँ। इसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जैसा सातवें अध्याय में बताया गया है कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से विभिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति जीव को अनादिकाल से अपरा प्रकृति के संपर्क में आ गई। अब क्योंकि परा प्रकृति जो जीव आत्मा है वो अनादिकाल से अपरा प्रकृति के संयोग में आ गई है, उसने उसको जकड़ लिया है, तो जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण होता है। अब यहाँ पर जो भी आपको शरीर मिल रहा है और तो वो क्यों? क्योंकि अलग अलग कर्मों के फलों के प्रभाव के अनुसार। परंतु जीव को जब ये शरीर मिलता है तो वो इस अनंत काल से, क्योंकि उसको ये शरीर ही मिल रहा होता है, तो वो इस शरीर को ही अपना आप समझने लगता है। क्योंकि बद्ध वातावरण में उसे अज्ञान के कारण ये शरीर का सुख दुख ही अपना सुख दुख लगने लगता है कि शरीर सुखी है तो समझो मैं सुखी हूँ, शरीर दुखी है तो मैं दुखी हूँ। परंतु इस सुख दुख से छूटने का अत्यंत ही सरल तरीका श्री प्रभुपाद ने बताया कि जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना ही इसके कर्मों के फलों का नियंता होता है। जब वो ये जान लेता है कि इस शरीर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रक्त एक प्राणी है। अब ये तो अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो बेचारा तो इतने समय से अनेक जन्मों से तड़प रहा है, एक ऐसा प्राणी है जो इस जीवन संघर्ष में लगा हुआ है और अपनी वास्तविक स्टेज को, अपनी वास्तविक गोल को प्राप्त करना चाहता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है, जिसके कारण उसको अलग अलग जन्मों में भेज दिया जा रहा है, लेकिन वो बार बार भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, शरीर में अटक के रह जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर रीति से बताया कि उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण महानामृत द्वारा समुद्र से बाहर निकले। वो जब तक इस समुद्र के अंदर रहेगा, इस दुखमयी संसार में रहेगा और अपने आप को इस संसार का हिस्सा समझता रहेगा, तब तक वो कभी भी अपने इस दुखों का खात्मा नहीं करेगा, अपना उद्धार नहीं करेगा। तो उसको क्या करना है? दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा इस समुद्र से बाहर निकले और इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा होगी। यहाँ पर भगवान ने बताया उसको शांति, उसको सुख कैसे मिलेगा? जब वो अपने आप को आत्मा समझेगा और मन से समस्त कर्मों के फलों का परित्याग करेगा। वास्तव में भक्तों, आज तक जिस जिसने भी भौतिक इच्छाओं को पूरा करके अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास किया है वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। भागवतम में हमें बहुत बहुत उदाहरण मिलते हैं। हिरण्यकश्यपु, उसके पास इतना सुख था, इतना वैभव था, वो जितना चाहे इंद्रिय तृप्ति कर सकता था, परंतु वो सुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है न तृप्तियेत अजितेन्द्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को वश नहीं किया है वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज, उसके पास सब कुछ था परंतु वो किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं था, वो संतुष्ट था, उसके पास कुछ भी नहीं था और संतुष्ट होने के साथ साथ कोई भय भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो भगवान सबकी रक्षा करता है, मैं उसी के आश्रय हूँ, वो मेरा भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है। अब इसी तरह से इंद्र को देखें, उसको भौतिक इच्छा थी, वो इंद्रासन को नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसने जो भी जब भी पृथु महाराज ने यज्ञ करना शुरू किया तो उसको ऐसा लगा कि मेरा राज्य छिन जाएगा, अपने आप को स्वामी माना ना, मेरा राज्य छिन जाएगा। तो सदैव क्या होता था, हमेशा दुखी होता था, हमेशा चिंतित होता था, हमेशा योजनाएं बनाता था कि कैसे मैं उसका यज्ञ खत्म कराऊं। लेकिन क्योंकि पृथ्वी महाराज को कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं थी, वो आराम से कर रहा था। इवन भगवान विष्णु आकर उनके सामने कहने लगे कि आपको कुछ चाहिए, तो बोले नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा था, मुझे इंद्रासन तो क्या, कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी सुख चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जो भौतिक सुख है वो तो कुत्ते बिल्ली इत्यादि जानवरों की योनियों में भी प्राप्त होते हैं, मुझे इन सबसे कोई नाता नहीं है, मैं तो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करता था। वास्तव में जब तक जीव के अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी एक कुत्ते की मिसाल देते हैं कि कुत्ता था, उसके मुंह में एक बोन थी हड्डी, वो जब जा रहा था तो रिवर में एक जैसे जलाशय में उसको दिखा कि सामने एक दूसरा कुत्ता है, उसके मुख में भी हड्डी है, तो उसने सोचा कि मुझे उससे भी वो वाली हड्डी लेनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा संतुष्ट दिख रहा है। तो फिर उसने क्या किया, वो उसके अंदर चला गया पानी के अंदर और उसकी अपनी जो वास्तविक उसके मुंह में जो हड्डी थी वो भी उससे खो दिया उसने। उसी तरह से भौतिक संसार में जब जो कुछ भी हमारे पास होता है, जो कुछ भी हम हासिल कर देते हैं अपनी मेहनत से, हम सोचते हैं जब भी हमारे पास आ जाता है वो, फिर हमारी नजर और आगे की ओर जाती है, फिर हम देखते हैं कि मेरे पास तो इतनी छोटी गाड़ी है, उसके पास तो कितनी बड़ी है, तो वो असंतुष्टि इतनी बढ़ती जाती है। किसी के पास सुंदरता होती है तो वो अपने से ज्यादा सुंदर जीव को देखकर है ना ईर्ष्या करने लगता है, किसी के पास घर अच्छा होता है लेकिन उससे ज्यादा अच्छा किसी के पास होता है तो उससे ईर्ष्या, यानी कि जब तक आपके हृदय के अंदर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की वासना समाप्त नहीं होती है तब तक आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, चाहे वो किसी कितने ही हद तक आप उस अपने भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास क्यों ना कर लो। ये तो भगवान ने पहले ही बता दिया 3.39 में, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरीणालेन च, कि काम जो है, जो हवस है वो कभी तृप्त नहीं रहता, तृप्त हो ही नहीं सकता, दुष्पूरीणालेन च, अग्नि के समान जलता रहता है। जैसे अग्नि जो है वो जलती रहेगी, उसके अंदर जितना भी आप ईंधन डालते जाओगे भड़केगी और भड़केगी। उसी तरह से जब तक मन संतुष्ट नहीं है, जब तक मन को संयमित नहीं किया है, जब तक मन को वश में नहीं किया है, तब तक आप भले इंद्रियों को कितना ही दे दो, काम वासना समाप्त नहीं होगी। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। यदि आप मन को वश में कर लोगे और मन से समस्त कर्मों का परित्याग करोगे, कर्मों के फलों की इच्छा नहीं करोगे, हृदय एकदम पवित्र होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कर्मण्य वाधिका रस्ते मा फलेषु कदा, मेरे अपने सारे कर्मों के फल मुझे प्रदान कर लो, तो फिर आप क्या, भगवान ने कहा सुखम वशी, इस तरह से संयमी हो जाओगे, अपने मन को वश में करोगे तो सुख मिलेगा। और आगे भगवान ने कहा न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ये जो आत्मा होती है न कार्य करती है और ना ही लोगों को कार्य के लिए उकसाती है। न कर्म फल संयोग, वो कर्म फल की भी अधिकारी नहीं होती है, स्वभावतः प्रवर्तते, और जो ये कार्य हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता है, इफ सोल डू नॉट डू एनीथिंग देन व्हाई सोल पनिश्ड टू वन बॉडी टू अनदर। अगर आत्मा कुछ करता ही नहीं है, भौतिक प्रकृति के द्वारा ही कार्य हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा कि आत्मा तो पवित्र है और भौतिक प्रकृति के द्वारा कवर्ड है, इसके कारण भौतिक प्रकृति ही कार्य कर रही है, और भौतिक प्रकृति तो भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। भगवान कहते हैं माया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरण, ये भौतिक प्रकृति मेरे आंख के इशारे से कार्य कर रही है। तो इट मीन्स कि द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्चुअल डूअर, वास्तव में कार्य भगवान ही कर रहा है, क्योंकि अब पहले भगवान ने कहा देखो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, प्रकृति कर रही और प्रकृति भगवान में मेरे इशारों पे कार्य करती है, तो अगर भगवान के इशारे पर प्रकृति कार्य कर रही तो इसका मतलब कार्य कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। देन इफ सुप्रीम लॉर्ड इज एक्चुअल डूअर, इट मीन्स ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिनफुल रिएक्शंस, है ना। अगर वो कार्य कर रहा है तो अपराधों की सजा मुझे क्यों? जैसे एक उदाहरण दूं कि अब मैं किसी की हत्या कर दूं, ठीक है, हत्या मैंने की, परंतु क्योंकि मैं कार्य नहीं कर रही हूँ, प्रकृति कर रही है और प्रकृति को भगवान आदेश दे रहे हैं, भौतिक शरीर को भगवान आदेश दे रहे हैं, तो फिर हत्या की सजा मुझे क्यों? भगवान ने किया है, मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों बनूं? मुझे क्यों दूसरा जन्म भुगतना पड़ेगा? अत्यंत सुंदर इसका आंसर भगवान दे रहे हैं श्लोक नंबर 15 में। भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतिम विभुम अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेने मोहयन्ति जन्तवः। बहुत ही सुंदर आंसर है, वो हम कल पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण।